अभिवादन। आज हम श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन पर बात करने वाले हैं, सच्ची उपासना, जीवन साधना और समष्टि की आराधना। इसमें उन्होंने अपने जो आत्मिक अनुभव है वो साझा किए हैं। उन्होंने एक बड़ी जरूरी बात सामने रखी है कि देखिए, आत्मिक उन्नति चाहिए तो तीन चीजें एक साथ करनी होंगी, उपासना, साधना और आराधना। जैसे अच्छी फसल के लिए है ना, बीज भी चाहिए, खेत भी और खाद पानी भी, तीनों का होना जरूरी है।
बिल्कुल, और ये तीनों आपस में जुड़े हैं। उपासना यानी जुड़ाव, साधना मतलब अनुशासन और अभ्यास, और आराधना मतलब अपने विकास को सबके भले के लिए इस्तेमाल करना। पर लेखक सबसे पहले जो आम धारणा है उपासना की, उस पर सवाल उठाते हैं।
हाँ, ये कि भाई पूजा पाठ कर लिया, कुछ फूल फल चढ़ा दिए, आरती कर ली, बस हो गई उपासना।
हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि बस इतना काफी है, भगवान को कुछ दे दिया, थोड़ी तारीफ कर दी और वो खुश,
और फिर हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, चाहे वो ठीक हो या ना हो। लेखक कहते हैं ये तो देवताओं को बहुत कम समझना हुआ।
उनका तर्क भी सीधा है। वो कहते हैं कि अगर बस इतनी सी बात होती तो जो लोग रोज मंदिरों में भीड़ लगाते हैं या घंटों पूजा करते हैं, वो तो कब के अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करवा चुके होते हैं। पर असलियत में ऐसा दिखता तो नहीं है, है ना?
सही बात है, नहीं दिखता।
तो फिर सच्ची उपासना है क्या उनके अनुसार? मतलब क्या है इसका?
उनके हिसाब से उपासना का जो शब्द है उपासन, उसका मतलब है पास बैठना।
पास बैठना शारीरिक रूप से?
नहीं, सिर्फ शारीरिक नहीं, ये है भावनात्मक और आत्मिक नजदीकी। जैसे दो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, बिल्कुल एक जान, वैसा भाव।
और इसका जो केंद्र है वो है समर्पण।
समर्पण?
अच्छा,
इसको कैसे समझाया उन्होंने, कोई उदाहरण?
हाँ, कई दिए। जैसे उन्होंने कहा कि ईंधन जब आग के पास जाता है तो वो खुद आग बन जाता है, आग ईंधन नहीं बनती। या जैसे कोई गंदा नाला नदी में मिलता है तो वो पवित्र हो जाता है, नदी गंदी नहीं होती।
अच्छा, हाँ, ये बात तो सोचने वाली है।
भगवान भक्त के हिसाब से चलेंगे।
अरे, ये तो पूरी सोच ही उलट गई। मतलब हम भगवान को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद भगवान की मर्जी में ढल जाए।
बिल्कुल, यही है आत्मसमर्पण। और लेखक बताते हैं कि उन्होंने खुद गायत्री माता और सविता पिता की उपासना इसी तरह की।
अच्छा, क्या अनुभव रहा उनका?
उनकी कोशिश ये नहीं थी कि भगवान से कुछ मांगे, बल्कि ये थी कि वो उनके सच्चे पुत्र बन सके, उनके आदर्शों पर चल पाए। उन्होंने ईश्वर को हर जगह महसूस किया, सर्वव्यापी, बहुत सूक्ष्म, और फिर लगा कि हाँ, उनसे एकाकार हुआ जा सकता है।
तो उनकी उपासना में क्रिया से ज्यादा श्रद्धा का महत्व था।
हाँ बिल्कुल, श्रद्धा प्रधान थी। हालांकि जप और ध्यान का अनुशासन भी था, वो साधना का हिस्सा था, पर उसके साथ लगातार समर्पण का भाव, ईश्वर से एकता, अद्वैत का भाव, इसका अभ्यास चलता रहा।
और ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं, आराधना का क्या मतलब हुआ फिर?
हाँ वही, इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, जो भी विकास हुआ, जो भी शक्ति मिली, उसे समष्टि यानी समाज के हित में लगाया, यही आराधना है।
तो इस पूरी उपासना, साधना, आराधना, इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम क्या निकला उनके अपने अनुभव में?
बहुत गहरे अनुभव हुए। उन्हें गायत्री माता का अनुभव हुआ श्रद्धा के रूप में अपने कारण शरीर में, प्रज्ञा यानी सही समझ के रूप में सूक्ष्म शरीर में, और निष्ठा मतलब दृढ़ता वो स्थूल शरीर में।
तीनों स्तरों पर, कारण, सूक्ष्म और स्थूल।
हाँ जी, और इसी तरह सविता पिता यानी सूर्यदेव, उनका तेजस जिसे ब्रह्मवर्चस कहते हैं, वो उनके अंदर शक्ति बनकर उभरा। ओजस यानी जीवन शक्ति, तेजस यानी प्रखरता, मनस यानी मानसिक बल, और वर्चस यानी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये सब उन्हें महसूस हुआ।
कमाल है, ये तो वाकई एक संपूर्ण रूपांतरण जैसा लगता है।
हाँ, वो यही बताते हैं कि इस अभ्यास के बाद एक ऐसी स्थिति आ गई कि हर पल ईश्वर साथ है, आनंद है, ये महसूस होता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक लगते हैं, जैसे समुद्र की लहरें।
और वो बूंद और समुद्र वाली बात?
हाँ, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर खुद समुद्र बन जाती है, वैसा ही अनुभव हुआ एकात्मता का।
तो अगर हम सार निकालें तो श्रीराम शर्मा आचार्य के लिए सच्ची उपासना सिर्फ बाहरी कर्मकांड तो बिल्कुल नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें श्रद्धा है, समर्पण है, अनुशासन वाली साधना है, और सबके हित की आराधना है।
मतलब लक्ष्य कुछ पाना नहीं?
नहीं, लक्ष्य है खुद बदल जाना, रूपांतरित हो जाना, ईश्वर को अपनी मर्जी से चलाना नहीं, बल्कि खुद को दिव्य इच्छा के सांचे में ढाल लेना।
ये वाकई बहुत गहरा विचार है।
और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर उपासना का मतलब है पास बैठना और अपने आदर्श जैसा बनने के लिए खुद को बदलना, तो अपने सबसे ऊंचे आदर्श के पास बैठने के लिए एक व्यक्ति को अपने अंदर सबसे पहले किन चीजों को बदलने की जरूरत होगी?